नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं 1811-7000 और 1811-2-7001। बीबीसी इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। आज़ाद भारत के इतिहास में भारत के सबसे चर्चित राजनेताओं में से एक इंदिरा गांधी के बारे में अक्सर दो बातें कही जाती हैं और ये दोनों बातें एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। झुंझुनू से झुमरी तलैया या फिर नैनीताल से नवादा, औरंगाबाद से उस्मानाबाद या रोहतक से रतलाम, शहर और राज्यों की सीमाओं से परे बस, ट्रेन, सड़क, बाजार, राह चलते आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करके देखिए, लोग इंदिरा गांधी को या तो सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर याद करते हैं जिसने भारत और भारत से बाहर भी अपने मजबूत इरादों का लोहा मनवाया, या फिर इंदिरा गांधी को एक निरंकुश शासक के तौर पर याद किया जाता है जिसने जो चाहा किया और किसी की परवाह नहीं की। इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी के बहाने हम चर्चा कर रहे हैं आज इसी विषय पर, श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी। इससे पहले कि हम सईद नकवी के साथ बातचीत शुरू करें, उन्हें चर्चा में शामिल करें, टेलीफोन लाइन के जरिए इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं आइए जानते हैं। शीशे के उस पार बैठे तकनीकी सहयोगी राजेश चौहान इशारा कर रहे हैं कि श्रोता टेलीफोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, कौन श्रोता जुड़ गए हमसे इस समय? हेलो, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है।
पहुंच रही सर।
कौन श्रोता बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
जी सर, मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट गुड़ामलान तहसील गांव बेरड़ा बना से हरीश बेरड़ बात कर रहा हूं सर।
हरीश भाई कैसे हैं?
बिल्कुल बढ़िया हूं सर, मेरा लगभग आज समय ने बाद वापस फोन कर रहा हूं सर।
अच्छा, बहुत खुशी हुई, क्या करते हैं आप?
बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार मैंने बहुत मिस किया है।
क्या करते हैं हरीश भाई आप?
जी मैं बीए कर रहा हूँ, गुजरात के अंदर नौकरी भी करता हूँ सर।
अच्छा
हाँ,
तो हरीश भाई बताइए आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं क्या राय रखते हैं आप?
सर विषय भी मेरे को बराबर ध्यान नहीं है सर, थोड़ा बता दीजिए सर।
हरीश भाई आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब याद किया जाता है तो कई लोग उन्हें ये कहते हैं कि वो भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थीं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि वो एक निरंकुश शासक थीं, किसी को कुछ समझती नहीं थीं। क्या क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप?
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री न कहीं हुआ है न कहीं होगा, वो अपने ही अंदाज से एक निर्णय लेती थी। जिस प्रकार जो उनको एक गोली के द्वारा मारा गया, लेकिन वो एक अपने भारत के लिए एक बेशक और आंखों में पानी आने जैसी बात थी। और इंदिरा गांधी जैसा कोई प्रधानमंत्री आज दिन तक होगा नहीं। हाँ, इसकी बराबर होट नरेंद्र मोदी जी जुटे हुए हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और जो लोग इंदिरा गांधी जी की नुक्ता सुनी कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है, वो गरीबों की मसीहा थी।
हरीश भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी कार्यक्रम में अपनी बात रखिएगा। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं? हेलो, कौन श्रोता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अब? कौन बोल रहे हैं?
डिब्रूगढ़ से उमेश कुमार सर।
डिब्रूगढ़ असम भारत के पूर्वी छोर से उमेश बोल रहे हैं।
जी सर, जी सर,
बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते उमेश जी, रखें अपनी बात विस्तार से, तार्किक तरीके से कहिए अपनी बात।
जी सर, इंदिरा जी जो है बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी हमारे विचार से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बहुत कड़े निर्णय किए। इसका जीता जागता उदाहरण 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई, पोखरण का परीक्षण उन्होंने करवाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, 1982 में एशियाड करवाया, बहुत विरोध के बावजूद कराया। और उन्होंने इमरजेंसी इसलिए लगाई थी सर मेरे विचार में कि अगर इमरजेंसी नहीं लगती तो सत्ता गलत हाथों में चली जाती। सत्ता अगर गलत हाथों में चली जाने से फिर उन्होंने जितने भी अच्छे कार्य किए थे सब पर पानी फिर गया होता। इसका एक जूता जागता उदाहरण है 1977 के चुनाव में उनकी पराजय हुई और सत्ता उनके हाथ से निकल गई, लेकिन मध्यावधि चुनाव हुआ और विपक्षी लोग तो सत्ता चला ही नहीं पाए, आपस की फूट के कारण से देश का बंटाधार हो गया।
उमेश भाई आपको ये थोड़ा तार्किक तरीके से बताइए कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि इंदिरा गांधी निरंकुश थीं, या जो लोग ये कहते हैं कि वो सबसे अच्छी प्रधानमंत्री थी, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थीं, कोई एक वजनदार तर्क दे सकते हैं आप इसके पीछे जो आप राय रखते हैं?
जी हाँ, मैंने उस समय तो मीडिया नहीं था, अखबारों में मैंने पढ़ा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनको कहा गया, सलाह दी गई कि आप जो है अपने सुरक्षा गार्ड से कुछ हटा दें, मतलब कम कर दें और दूसरा चेंज कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और जिसका परिणाम है कि वो उनके 1984 सन में वो मारी गई। तो अगर निरंकुश रहती तो फिर वो तो तुरंत हटा दी होती, उन्हें तो पता था कि अगर ऐसा खतरा हो जाए मेरे साथ तो फिर उन्हें अपनी जान अगर प्यारी रहती तो फिर वो जरूर हटाती उनको, तो कैसे हम इस हालत में निरंकुश उन्हें कह सकते हैं।
असम डिब्रूगढ़ से ये थे हमारे श्रोता उमेश कुमार, और अब कार्यक्रम में हम स्वागत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी का। नकवी साहब आज़ाद भारत के उन पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने आज़ाद भारत के इतिहास को अपने सामने घटित होते देखा है। इंदिरा गांधी को कैसे याद करेंगे आप?
इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद, पंडित नेहरू के बाद, मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा याद रखने वाली प्रधानमंत्री तारीख उनको लिखेगी। लेकिन ये कि वो बीच में एक नाम और भी आता है, और वो नाम है मेरे ख़्याल में अटल बिहारी वाजपेयी का। ये तीन वो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं जिनका कि करिश्मा बड़ी हद तक लोगों पे हावी रहा, और जिनकी वजह से उनकी लोकप्रियता, अब लोकप्रियता लेकिन दोनों की गई, अटल जी भी इलेक्शन 2004 में हार गए और इंदिरा गांधी 2-3-4 दफ़े हारी। तो अब ये समझ में नहीं आता कि इंदिरा गांधी को किस तरह से याद रखें। मेरे ख़्याल में हम लोग गलती ये करते हैं कि हम इंदिरा गांधी को सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी का बचपना हम भूल जाते हैं, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी ये भूल जाते हैं, वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट कैसे बनी इस बात को भूल जाते हैं, किस हद तक वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी जब 1957 में वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। अगर इन सब चीज़ों का, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की बेटी 1957 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई, तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग उसके खिलाफ आ गया,
वही जो बाद में उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करता था।
वो तो सोशलिस्ट थे पार्टी के अंदर के लोग, और उसको रद्द करने के लिए उन्होंने वो कदम उठाया जो कि इंस्टिंक्टिवली उनका नहीं था। मसलन फौरन उन्होंने लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो आई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पहली दुनिया में आई थी, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस से वो केरल में थी, उसको फौरन जैसे ही वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी, उसी दिन ईएमएस नम्बूदरीपाद चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन वो मूवमेंट हुआ और 59 में उन्होंने डिसमिस कर दिया। ये कंसिस्टेंसी इसमें नहीं है, क्योंकि फिर 1969 के जब कांग्रेस स्प्लिट के बाद वो डांगे के करीब आ गई, कुमारा मंगलम थीसिस चली, तो आइडियोलॉजिकली वो कहाँ थी, ये जो आइडियोलॉजिकली उसको असेस करते हैं वो गलती करते हैं। दरअसल वो बहुत बड़ी प्रैग्मेटिस्ट थी। हमारे दोस्त थे पीटर हेजलहर्स्ट टाइम्स लंदन के, जब उन्होंने ये कुमारा मंगलम थीसिस जो कि थी कि हम लेफ्ट के साथ चलेंगे, उसको उसने बहुत अच्छे, उसने कहा शी इज़ लेफ्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी वो अपने हित के लिए लेफ्ट पे हैं, लेकिन बुनियादी तौर से उनका यकीन ये था कि गरीब मुल्क लेफ्ट ऑफ सेंटर ही, ये ऊँट उसी कल बैठेगा।
नकवी साहब, चर्चा का दायरा बहुत ज़्यादा फैल ना जाए और एक जिस हम सवाल के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं उस पर हम लौटने की कोशिश करेंगे। हमारे बीबीसी के हिंदी के फेसबुक पन्ने पर राजा बाबू एक पाठक श्रोता हैं, एक सवाल है उनका, वो बहुत सीधा सवाल पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने देश को इमरजेंसी में झोंक दिया तो वो सबसे अच्छी प्रधानमंत्री कैसे हो सकती हैं?
नहीं, अब उसके भी दो पहलू हैं। आपने इससे पहले एक श्रोता से सुना कि अगर वो ये ना करती तो वो होता जो कि 1977 के इलेक्शन में हुआ। ये दो पहलू हैं उसके, लेकिन क्या वो एंटी, इसमें डिटेल्स हैं और डिटेल ये है कि क्या वो इंदिरा गांधी का स्टेप था, क्या वो उनका डिसीशन था। मेरे ख्याल में जो मैंने उनको उस ज़माने में देखा, वो महज संजय गांधी, और संजय गांधी का असर कुछ दो तीन कांग्रेस के प्लेयर्स जिसमें कि सिद्धार्थ शंकर रे, ये लोग थे जिन्होंने बिल्कुल, वो खामोश हो गई थी। मैं उनको इंटरव्यू करने गया तो लोगों का ये ख्याल था कि साहब इंदिरा गांधी दुर्गा हैं और इंदिरा गांधी से ज़्यादा पावरफुल प्राइम, इतनी डरी हुई खातून मैंने नहीं देखी। तो इसलिए उनको हर तरफ से देखना चाहिए। वो ये है कि इमरजेंसी जो थी वो डिक्लेयर की गई, उनको मालूम नहीं था वो क्या करें, और अपने छोटे बेटे के कहने पर उसी ने किया सब, वो इमरजेंसी आ गई। और पी एन हक्सर में वगैरह जो अलग कर दिए गए उससे पहले कर दिए गए थे। धीरे धीरे ये हुआ कि इलेक्शन होना चाहिए और उसमें भी उनको नहीं मालूम था वो क्या करें। आईबी की रिपोर्ट्स आ रही थीं, तमाम इधर उधर की खबरें थीं, लेकिन उन्होंने अपने एडवाइज़र्स को सुना, किसी ने उनको समझदारी की एडवाइस दी कि आप इलेक्शन करें। वो हक्सर साहब जो थे
जी,
ना पी एन हक्सर नहीं, वो क्या नाम था, ए एन हक्सर, उन्होंने एडवाइस दी कि आप इलेक्शन करें। वो इलेक्शन हुए और वो जीती, लेकिन जीतने के फौरन बाद, देखिए इंदिरा गांधी के दो तीन फेजेस हैं, एक फेज इलेक्शन से, एक इमरजेंसी से पहले, एक फेज इमरजेंसी के बाद।
नकवी साहब, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, आपातकाल लगाने से पहले और आपातकाल लगाने के बाद जो इंदिरा गांधी के दो चेहरे और जो दौर या चरणों की आप बात कर रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इस समय कौन श्रोता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? हेलो
जी सर, हेलो,
कौन बोल रहे हैं?
सर मैं मसूद अहमद बोल रहा हूँ।
हेलो
जी, मसूद अहमद कश्मीर से।
मसूद अहमद कश्मीर से बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम मसूद भाई चर्चा कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी को भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री माना जाए, कहा जाए, ये ठीक होगा, या उन्हें एक निरंकुश प्रधानमंत्री के तौर पर जैसा कि कहा जाता है उस रूप से देखा जाए, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप?
देखिए सर, कभी बे कसी ने मारा, कभी बे बसी ने मारा, गिला नहीं किसी से मुझे, मेरी किस्मत ने मारा, न कमी थी दोस्तों की, न कमी थी दुश्मनों की, किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा। मोहतरमा इंदिरा गांधी ने कश्मीर के हवाले से जो बड़ी गलती की है, मैं उस पर आपके इस चैनल के तौर से पूरे देश की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बड़ी बात ये थी कि जब
जी कहें अपनी बात, लगता है उनसे हमारी संपर्क टूट गया है। और कौन श्रोता इस समय हमारे साथ हैं?
जी नमस्कार, मैं पन्नालाल बोल रहा हूँ बाड़मेर राजस्थान से।
अरे आपकी आवाज से हम आपको पहचान गए पन्नालाल जी, बाड़मेर राजस्थान से। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके टेलीफोन अक्सर कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं।
जी नमस्कार सर, इंदिरा गांधी जी भारत की सबसे ताकतवर महिला थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी सर के प्रधानमंत्री भी उनके कार्यों के अनुभव के पीछे भी चल रहे हैं। उनकी यदि कोई नाकामी थी तो वो एकमात्र थी आपातकाल की, क्योंकि उनकी वो मजबूरी थी उस टाइम भारत का भारत समय में।
नकवी साहब, आपको लगता है कि इंदिरा गांधी की आपातकाल लगाने के वजह से उनके बाकी काम दब गए, ऐसा लगता है आपको क्या, जैसा कि ये श्रोता जिक्र कर रहे थे?
उसकी चर्चा ज़्यादा हो गई और वो किस वजह से लगे और वो क्यों उठा, आखिर वो फेस ख़त्म भी हुआ। लेकिन ये कि डायनामिक पॉलिटिकल सिचुएशन थी हिंदुस्तान में, उसमें मिसेस गांधी ने कुछ स्टेप्स जब वो इन कंट्रोल थी, देखिए उनके एडवाइजर्स पे बहुत डिपेंड करती थी वो, उनसे हट के डिसीशन नहीं लेती थी। जब पी एन हक्सर उनके सेक्रेटेरिएट से हटा दिए गए ऑलमोस्ट और उनके साहबजादे ने डिसीशन लेना शुरू कर दिया, तो उनकी समझ में नहीं आया वो क्या करें। ये था उनकी डिपेंडेंस ऑन सम सेलेक्टेड एडवाइजर्स, ये उनकी एक कमज़ोरी भी थी, ये उनका एक मजबूत पहलू भी था कि जब भी वो डिसीशन लेती थी एडवाइस लेके, लेकिन जहाँ उन्हें एडवाइजर्स उनके छट गए फिर वो घबरा जाती थी। और हमने, मैंने आपको बताया, मैंने खुद उनको उस फेज़ में देखा है जबकि वो एडवाइजर्स के बगैर थी, उनकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या कहें।
लेकिन नकवी साहब, आपको नहीं लगता कि भले ही जो सलाहकार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो उनकी सलाह पर काम कर रही थी नहीं कर रही थी, लेकिन फैसला लेने का जो भी फैसला हो वो आखिरी बुद्धिमत्ता आखिरी समझदारी उस व्यक्ति पर निर्भर करती जिसने सलाह ली है, तो आखिरी तौर पर जो काम हुए जो नतीजा निकला जो कुछ भी है वो इतिहास की विषय वस्तु है, लेकिन आप परामर्शदाताओं को आगे करके जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ सकते?
देखिए उनका डिसीशन बांग्लादेश पे वो उनका डिसीशन था, उनका हमारे न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन हुआ उनका डिसीजन था, और इसी हद तक इमरजेंसी भी आप कह सकते हैं। हालांकि हम जानते इत्तेफाक की होती, कभी कभी आप ज्ञान जो है वो बाधा बन जाता है किसी एक बड़े आदमी के समझने में। मैं जानता हूँ बहुत से डिटेल्स, इसलिए मैं ज़रा सा रुक जाता हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी को जाहिर है हिंदुस्तान की तारीख में सबसे जवाहरलाल नेहरू द ग्रैंडियर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की जगह क्या है दुनिया में, इंदिरा गांधी पावर ऑफ इंडिया शक्ति, यानी अटल बिहारी वाजपेयी को भी दुर्गा कहना पड़ा।
कार्यक्रम में मसूद अजहर कश्मीर से, श्रीनगर से दोबारा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मसूद भाई, रखें अपनी बात।
सर मैं बात कर रहा था कि न कमी थी दोस्तों की न कमी थी दुश्मनों की, किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा।
अब मसूद भाई आप टू दी पॉइंट बता दीजिए, दिक्कत क्या हो रही है?
देखिए सर, मैं कश्मीर के हवाले से इंदिरा गांधी को के मुताबिक बात करूंगा। आप हम सब जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के साथ एक जंग लड़ी हिंदुस्तान ने, उसके बाद एक बड़ी फतेह, बांग्लादेश का वजूद आया, एक नया मुल्क बना। उसके बाद दिसंबर 16, 1971 को दोनों मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट होता है जिसे शिमला एग्रीमेंट के तौर पे जाना जाता है, और उसी के तहत इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों को जो हिंदुस्तानी फौज ने कैद कर लिए थे उनको छोड़ दिया गया, नंबर एक। नंबर दो सर देखिए कि इंदिरा गांधी ने 1984 में कश्मीर के अंदर गलत तरीके से अपनी जो उनका पावर था उसका मिसयूज करके वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत को गिरा दिया और वहां पे गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। और इसी पे बस नहीं, अब उनके आगे चलते हुए अपनी मांग के नक्शे कदम पे राजीव गांधी जी ने उस गलती को मजीद बढ़ाते हुए कांग्रेस और एनसी का अलायंस 1989, 87 और 89 के बीच में कर दिया।
लगता है फिर रابطہ कायम नहीं हो पा रहा है इनसे। हमारे श्रोता थे श्रीनगर से, तो आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि सईद साहब ये जो हमारे श्रोता कह रहे थे कश्मीर के मामले में इंदिरा गांधी की जो तथा कथित गलतियां थीं उसकी वजह से उनके कद पर कोई असर पड़ता है, उनके चेहरे पे कोई दाग पड़ता है, कश्मीर को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए?
कश्मीर बड़ा पेचीदा मामला है और कश्मीर को उस पैमाने में रखें जिसमें कि आप मिसेस गांधी को असेस कर रहे हैं, तो बहुत से हर प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं कम पाया जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में कश्मीर के मसले को हम अभी नज़रअंदाज करें, क्योंकि वो बड़ा डिटेल में जाने की जो एक ख़ुद एक मसला इतना बड़ा है। लेकिन बाई एंड लार्ज मिसेस गांधी ने, देखिए, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की चल रही थी और उसको जो एकदम से इमरजेंसी से ठेस लगी। कभी कभी एक कहावत है कि देर इज़ अ सोल ऑफ गुडनेस इन ऑल थिंग्स ईविल। तो इमरजेंसी के बाद हुआ ये कि एकदम से लोग चौकर ना हो गए, यानी कहीं उस किस्म की कोई स्टेप्स आते हैं तो हम फौरन कहते हैं देखो ये इमरजेंसी की सिचुएशन आ रही है। तो इमरजेंसी मिसेस गांधी के ऊपर एक दाग था और वो दाग हटाना मुश्किल होगा। जैसे मैंने कोशिश की कि मैं कहूँ कि भाई संजय की थी गलती, सिद्धार्थ शंकर रे की गलती थी, लेकिन डिसीशन लेने वाली वो थी।
कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और श्रोताओं को नकवी साहब, वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं?
हाँ सर, हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
मैं चौधरी रंगलाल नमोरिया बोल रहा हूँ, दोनों राजस्थान से।
चौधरी साहब रखें अपनी बात, बहुत स्वागत आपका।
बात ये साहब, इंदिरा जी का एक तो निर्णय ये था जो राजाओं का एक परिवेश बंद किया वो बहुत अच्छा था, एक दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण
जी,
और तीसरा बांग्लादेश की लड़ाई करा के बांग्लादेश को निर्माण कराना। चौथा उनका गलती ये था निर्णय इमरजेंसी लगा के देश में।
चौधरी साहब और कुछ कहना चाहेंगे आप? कहिए।
हाँ, फिर 78 में दोबारा पार्टी खड़ी करी तो वो जयपुर भी आए, तो मैं सीसराम ओड़ा जी के साथ मिला था, तब हिम्मत करके दोबारा फिर आई, उनके निर्णय लेने में एकदम क्षमता थी।
और चौधरी साहब के बाद कौन श्रोता और हैं, सबको शामिल करते चलें, लगे हाथ।
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
सर आदाब, मैं दिलावर सिंह कादरी जैसलमेर राजस्थान से।
कादरी साहब बहुत स्वागत आपका, रखें अपनी बात।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, लहू हमने पेश किया चमन की खातिर है, चमन वालों चमन में जब बाहर आए तो हमें भी याद कर लेना। इंदिरा आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री, उन्होंने सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी। मेरा कहना यह है अगर वो कुछ समय तक जिंदा रहती तो कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। आज जो कश्मीर का हम रोना रो रहे हैं वो समस्या नहीं रहती, पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाता, सिंध भी अलग हो जाता, बलूचिस्तान भी अलग हो जाता, उसे पंजाब भी अलग हो जाता। अगर कुछ समय के लिए वो जिंदा रहती तो ये हमारे जो आज जो हमारे जो पड़ोसी से संबंध है जो वो भी सुधर जाते हमारे।
सईद साहब बहुत कम समय बचा है, माफी चाहता हूँ, आधे मिनट में 30 सेकंड में संक्षेप में इतिहास इंदिरा गांधी को कैसे याद करेगा?
इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा, जिन्होंने हिंदुस्तान को शक्तिशाली मुल्क बनाया उसमें इंदिरा गांधी की गिनती की जाएगी। एक तो न्यूक्लियर इशू, दूसरे बांग्लादेश। अब इन दोनों के अलग अलग पहलू हैं जिसके लिए कि आपके पास वक्त नहीं है।
आज जब बीत जाता है तो कल बन जाता है और आने वाला कल बीते कल को परिभाषित करता है, और इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, इसलिए बहुत संभव है कि आने वाले वर्षों में किसी और राजनेता को भारत का सबसे शक्तिशाली और निरंकुश प्रधानमंत्री बताया जाए, बहुत मुमकिन है। जो भी हो, चर्चा जारी रहना चाहिए। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही। सईद साहब, नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और सभी श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने देश दुनिया में हमें सुना, टेलीफोन किया, कार्यक्रम में शामिल हुए, माफ़ी उनसे जिन्हें हम शामिल नहीं कर सके। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान और अब संदीप सोनी के साथ इंडिया बोल में पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।